अब अगर हम थोड़ा सा इसको डिक्शनरी के साथ और असलाफ ने इस आयत को कैसे समझा इसको देख लीजिए। मैं आपको कुछ कोटेशन पढ़ के सुनाऊंगी, रिवायतों को भी मैं स्किप करती हूँ, जिसको डिटेल चाहिए वो बाद में ले सकते हैं। मोहम्मद बिन सीरी ने उबैदा सुलेमानी से इस आयत का मतलब पूछा, और ये कौन थे जो नबी सल्लम के ज़माने में मुसलमान हो चुके थे लेकिन हाजिर खिदमत ना हुए। हज़रत उमर के ज़माने में ये मदीना में आए और वहीं आ गए, और इन्हें फ़िक्र और कुज़ा में काजी शुरैह का हम पल्ला समझा जाता है, यानी बिल्कुल नबी सल्लम के सहाबा के दौर के लिए साथी हैं। इनसे पूछा गया कि युद्दीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, इसका क्या मतलब है। उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय अपनी चादर उठाई और इसे इस तरह ओढ़ा कि पूरा सर और पेशानी और पूरा मुंह ढक कर सिर्फ एक आंख खुली रही। इब्ने अब्बास भी करीब करीब यही तफसीर करते हैं। इसी तरह कुछ और मुफस्सरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी काम के लिए घरों से निकलें तो अपनी चादरों के पल्लू ऊपर से डालकर अपना मुंह छुपा लें और सिर्फ एक आंख खुली रखें। तफसीर कतादा और सुद्दी ने भी शायद की यही बात बयान की है। इसी तरह कुछ और मुफस्सरीन, ये सब अरबी की तफसीरें हैं जिसके नाम है, मसलन इमाम इब्ने जरीर तबर्री कहते हैं युतनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, शरीफ औरतें अपने लिबास में लौंडियों से मुशाबा बनकर घर से ना निकलें कि उनके चेहरे और सर के बाल खुले हुए हों, बल्कि इन्हें चाहिए कि अपने ऊपर अपनी चादर का एक हिस्सा लटका लिया करें ताकि कोई फासिक इनको छेड़ने की जरूरत ना करे। यह जामिल बयान इनकी तफसीर है, जिल्द 22 पेज नंबर 33 की रिवायत है, आप देख सकते हैं। एक दूसरा रेफरेंस है अलामा अबू बकर जस्सास, बड़ी मारूफ अरबी की तफसीर है अलामा जस्सास की, कहते हैं कि यह आयत इस बात पर दलालत करती है कि जवान औरत को अजनबियों से अपना चेहरा छुपाने का हुक्म है और इसे घर से निकलते वक्त सतर और इफ़त माबी का इजहार करना चाहिए ताकि मुश्तबे सीरत और किरदार के लोग इसे देखकर किसी तमे में मुबतला ना हो जाए। यानी जिनके दिल गंदे हैं वो ये ना सोच लें कि ये औरत मेरे में इंटरेस्टेड है या मैं इससे अपना मामला बढ़ा सकता हूँ। यह अहकामुल कुरान जिल 3 सफ़ा 458 की रिवायत है। फिर एक और रेफरेंस है अलामा ज़मख़शरी का, इनकी भी बहुत मारूफ रिवायत है, कश्याफ इनकी किताब है, जिसमें ये लिखते हैं कि युतनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन में अपनी चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें, इससे अपने चेहरे और अपने अतराफ को अच्छी तरह ढांक लें। इसी तरह एक रिवायत है, एक हवाला निज़ामुद्दीन निशापुरी की एक तफसीर है गराइबुल कुरान, लिखते हैं कि युतनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, यानी अपने ऊपर चादर का एक हिस्सा लटका लें, इस तरह औरतों को सर और चेहरा ढांकने का हुक्म दिया गया, गराइबुल कुरान जिल्द 22 सफ़ा 32 पे। फिर इसी तरह इमाम राजी हैं तफसीर कबीर, आज भी शोहरा आफाक तफसीर है अरबी ज़ुबान में, लिखते हैं कि इससे मकसूद यह है कि लोगों को मालूम हो जाए कि ये बदकार औरतें नहीं हैं, क्योंकि जो औरत अपना चेहरा छुपाएगी हालांकि चेहरा सतर में दाखिल नहीं, इससे कोई शख्स ये तवक्को नहीं कर सकता कि वह अपना सतर भी गैर के सामने खोलने पर राजी होगी। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जिस औरत ने चेहरा छुपा लिया जो सतर नहीं है तो क्या वो अपना सतर खोलेगी। ये है कि योर अफना पहचान ली जाए कि ये बाहया औरतें, इस तरह हर शख्स जान लेगा कि ये बापर्दा औरतें हैं और इनसे जिना की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तफसीर कबीर जिल 6 सफ़ा 591 की रिवायत है, और 38 उर्दू की किताबों के रेफरेंसेस मेरे पास नोट्स में मौजूद हैं, अगर आप कहें तो मैं सुना देती हूँ, नहीं तो मान जाइए। जिन सब ने इस एक आयत की तफसीर में ये बात लिखी है कि युद्दीन अला ऊपर से सर के ऊपर से कुछ डालना है, इसके बावजूद आज के दौर में इस चीज़ को इतना मुख्तलिफ करके पेश किया कि जो बेचारे करते भी हैं वो भी सोच में है कि शायद हम को टू मच तो नहीं हो गए, हम बेचारे नहीं, और कुछ लोग सारा दीन मानने को तैयार, नहीं मानते तो ये आयतें नहीं मानते। देखिए हिजाब का मौजू वो है जो किसी को बर्दाश्त ही नहीं होता, ना लोगों को नमाजें पढ़नी बुरी, ना सदके बुरे, हज बुरा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ एक आधे गज के कपड़े से लोग डरते हैं। एक लेक्चर था यासिर काजी का, नाम शायद आपने सुना हो, स्पीकर है, तो लंदन में एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल काफ़ी बड़ी, उसमें गालिबन कितने 50-60 हज़ार मुसलमान आते हैं, वल्लाह वालम जो उसकी झलकियाँ थी और जो मैंने उसका फिगर्स देखे, तो उसमें उन्होंने लेक्चर दिया था, और जब वो बात कर रहे थे तो अपने साथ ही उन्होंने निकाल के ना, तो इतना छोटा सा सिर्फ चेहरे पे निकाब आता है, तो वो दिखाया, पूरा मीडिया उसकी कवरेज करता है और मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब आते हैं, कहा कि आज का वह सिर्फ इस चंद इंच के कपड़े से डरता है, सिर्फ तुम इससे डरते हो। फिर उस पर उन्होंने बताया कि असल में ये इस कपड़े का खौफ नहीं है, असल में खौफ कुछ और है। जब औरत को आप दूसरों की नज़रों से दूर कर देते हैं ना, उसकी अवेलेबिलिटी दूर होती है, आपके एडवर्टाइजमेंट, आपके एड्स, आपकी फिल्में, आपका मीडिया, आपकी मूवीज, आपके चैनल्स, आपके गंदी चीज़ों को तो छोड़ ही दीजिए, सवाल पैदा होता है चलने का, आपकी एयर होस्टिंग नहीं हो सकती। ये पूरी सोची समझी बात है, आप अगली आयत साथ मिलाएं तो आप इसको ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। हम सिर्फ पर्दे की आयत को यहाँ तक लेके कहते हैं अच्छा जी पर्दा है कि नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं लाइलम यंतहिल मुनाफिकूना, अगर ना बाज आए मुनाफिक, वल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरदुन, और वो भी बाज ना आए जिनके दिलों में बीमारियां, वल मुरजिफून फिल मदीनती, और शहर में झूठी अफवाहें फैलाने वाले, तो क्या करेंगे हम, लनुहरियन्नक बिहिम ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا, तो हम आपको मुसल्लत कर देंगे इन पर, फिर वो ना ठहर सकेंगे आपके पास मदीना में मगर चंद रोज। क्या इनका हाल है, मलऊनीन, लानत सदा, एक होता है मलऊन और ये है मलऊनीन, ये सारे लानत में है। अइनम सुकिफु, जहां कहीं ये पाए जाएंगे, मशरिक में, मगरिब में, माजी में, हाल में, ऐसे गंदे काम करने वाले लोग जहां भी पाएंगे इन पे अल्लाह की लानत होगी। उखिजु वकुत्तिलु तक्तीला, पकड़ लिए जाएंगे और जान से मार दिए जाएंगे, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना। इतनी जबरदस्त आते हैं, मदीना के वो मुनाफिक और बातिन लोग थे जो अल्लाह के नबी सल्लम की बीवियों और सहाबियात के बारे में तरह तरह की बातें निकालते रहते थे। मेरा ख्याल है कि वहां से वो जर्म्स शुरू हुए जो आज पूरी दुनिया में फैल गए, कि इनका दिल क्या था कि किसी तरह मुसलमानों की औरतों की इज्जत को पामाल कर दो, अल्लाह के नबी के घराने को पार कर दो। ये वो लोग थे कि जो तरह तरह की अफवाहें फैलाते थे। यहाँ जो मुरजफीन का लफ्ज है, ये इर्जा से है, और इर्जा कहते हैं अफवाह साजी को, झूठी बातें, ऐसी बातें कड़ी करते थे, कभी कुछ, कभी कहते फलां इलाके में मुसलमान मकलूब हो गए हैं, फलां इलाके में मदीना से लश्कर हमलावर होने वाला है। आज भी लोग अफवाहें फैलाते हैं ना, वो फलां औरत का निकाब छीन लिया गया, फलां मुल्क बैन हो गया, फलां एयरपोर्ट पे रोक ली गई। यकीन करें, मैं अपनी मिसाल आपको देती हूँ कि जब मैंने ट्रेवल करना होता है, मेरे अपने करीबी घर वाले हमें नसीहतें कर रहे होते हैं कि आप वहाँ पर्दा खोल लीजिएगा, बड़े मसले हमने टीवी में देखा, हमने खबरों में देखा, फलां को फिर पता ही नहीं चला वो किधर है क्या नहीं। मैंने तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह आगे भी महफूज रखे गलत चीज़ों से, मैंने जितनी इज्जत पर्दे के साथ नॉन मुस्लिम से पाई है, शायद अपने मुल्कों में तो इसका एहसास ही नहीं हमें होता। इतनी इज्जत से वो लोग पेश आते हैं, ये सिर्फ प्रोपेगंडा, ये मुरजिफून फिल मदीना वाले लोग हैं, सिर्फ प्रोपेगंडा। एक बात को बार बार दोहराओ कि लोगों को सच लगे, अच्छे ईमान वाले, अच्छे दीन वाले, पढ़ने पढ़ाने, लिखने लिखाने, सुनने सुनाने वाले, ऐसी बातों से मुतासिर होकर अपनी बहू बेटियों के पर्दे और उनके कपड़े हल्के करने लगते हैं कि नहीं, लोगों को ये ना पता चल जाए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने कहाँ ला के देखे, पीछे और आगे मुनाफिकीन की ब्रैकेट्स लगी हुई है और बीच में कहा कि युद्नीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, अल्लाह ने क्यामत तक के लिए इनके ऊपर ये बातें फैला दी कि देखो तुम नहीं मानोगे तो ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमने तुमको बता दिया कि हुक्म यही है, मानना है तो मान लो। अच्छा, अब होता पता क्या है, जब एक बात समझ भी आती है ना, दिल मान रहा होता है हमारा, तो फिर हम कहते हैं, कुछ सवाल जहन में आते हैं ना, मसला हम कहते हैं अच्छा चले ज़रा शौहर से पूछ लेते हैं, चले ज़रा माँ बाप की इजाज़त ले लूँ। अगर किसी के जहन में ऐसा सवाल आता है तो उसका जवाब हल्का सा ये है, इमेजिन करें कि कोई औरत ड्राइव करती है, रेड लाइट आ गई, क्या करते हैं, रुकते हैं कि क्या कहते हैं, ज़रा मैं शौहर से पूछ लूँ, मैं रुकूँ कि ना रुकूँ। और अगर कोई औरत उस वक्त किसी दूसरे से ये मशवरा लेने लग जाए ना कि भाई मैं यहाँ रुक जाऊँ कि ना रुकूँ, तो आप सोचिए कि उसका हाल क्या होगा, तबाही लाजिम है कि नहीं है। बिल्कुल वही कैफियत यहाँ पे हमें दिखती है कि किस तरीके से इन मामलात में हम दूसरे के कंधे के ऊपर तलवार रख के चलाते हैं कि अल्लाह करे वो मुझे रोक ले, अल्लाह करे वो मुझे मना कर ले। वरना आप देखिए, जिसको अपनी मौत याद है वो तो कभी नहीं पूछेगा, और जिसको कब्र की तंगी याद है ना, उसका दम कभी पर्दे से नहीं घुटेगा, ये मैं सच कहती हूँ। और जिसको कब्र की गर्मी याद है ना, उसका गर्मी की वजह से पर्दा करना मुश्किल नहीं है। और जिसको उस वक्त का वो वक्त याद है कि जब उसके नाक में लोग रुई दे देंगे और उसका सांस नहीं घुटेगा, तो वो ये नहीं कहेगी कि मुझे सांस घुटता। और कुछ का प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर का, कि सर पे मोटा कपड़ा ले लेते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो वो कफन की उन डोरियों को अगर याद रखेगी तो उसको कभी कुछ भूलेगा नहीं। याद रखिए, ना ये किसी से पूछने की चीज़ है और ना बताने की ज़रूरत है, ना ये कोई ऐसा मसला है। हम बाथरूम में जाते हैं इजाज़त लेते, खाना खाते हैं इजाज़त लेते, फितरत है। सोने से पहले कोई परमिशन लेता है किसी दूसरे से, बाहर बैठे हों से। सरासर एक औरत और अल्लाह का मामला है। हम दूसरों को बाज़ दफ़ा वो भी इख्तियार देने लगते हैं जो उनके नहीं होते। आज हमारे कल्चर, ख़ास तौर पे मशरकी कल्चर की ये बहुत बड़ी खामी है कि हमने अपने मर्दों, जिसमें हमारे माँ बाप, भाई बहन या अपने शौहर, बच्चों को वो हकूक़ भी दे दिए जो उनके नहीं थे। और लोगों का हाल क्या कि जब तक उनको अल्लाह वाले हक भी आप ना दे दें वो खुश नहीं होते आपसे। तो ऐसी चीज़ें दिल को लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बाकी रह गई बात इख्तलाफ़ किस में है। अगर आप इसको फिक की रोशनी में लें, हो सकता है आपके जहनों में चंद सवाल हों, और इस वक्त मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे सवाल जो उठते हैं जहन में उसका जवाब दे दूँ। कुछ कहते हैं कि जी अरब तो कहते हैं ना करो, फलां कहते हैं ना करो, तो बात इसको चंद लफ्ज़ों में समेट लें। सतर की हद तक हर बंदे का इत्तफाक है। मेरे पास वो भी रेफरेंसेस पूरे नोट किए हुए हैं कि कौन जो चेहरे के पर्दे को खोल की इजाज़त देते हैं वो क्या कहते हैं। तो मुत्तफिक बात क्या है, सतर कोई एक मसलक मुसलमानों का बिगड़े से बिगड़ा, ख्वाहिशों के अंदर गिरा पड़ा मुसलमान भी ये नहीं कहता कि औरत सतर खोल सकती है, यानी कि जिस्म के काबिले शर्म हिस्से खोले। उसके बाद आप ऊपर चलते हैं, औरत के चेहरे और हाथ, ये दो चीज़ें हैं, चेहरा और हाथ। इसके सिवा औरत के सर, उसके बाल, उसके पाँव को छुपाने पे भी इत्तफाक है। कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई अमरीकी है, कहीं का आलिम आप देख लें, सबका इस पे इत्तफाक है कि ये चीज़ें तो छुपेंगी। सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफी मसला जो ना वो चेहरे और हाथ का, और वो फ़र्क क्या है, हम सूरत नूर में थोड़ी बात कर चुके, इल्लमा ज़हरा मिन्हा, कि मगर जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए। तो वो कहते हैं कि हाथ ज़ाहिर हो जाते हैं, चेहरा ज़ाहिर होता है, सिर्फ इतने पे। लेकिन जो चेहरा और हाथ खोलते हैं उस पर फिर इस पर इजमा है। इजमा का मानी यह है कि सब लोग उस पर मुत्तफिक हैं कि उस वक्त चेहरे पे कोई ऐसी आराइश या जिबाइश ना हो, यानी मेकअप या ज्वेलरी जो उसके हुसन को नुमाया करे, और हाथों पे कोई सोना चांदी, कोई ऐसी गोल्ड की चीज़ यानी जिससे औरत के हाथ मज़ीद खूबसूरत लगें, मेहंदी लगी हुई है या क्यूटेक्स लगी हुई है, ये ना हो। ये उनके भी मसले हैं। आज भी आप अरब बहनों को देखिए, माशाल्लाह जब बाहर निकलती हैं बिल्कुल सादा निकलती हैं जो चेहरे खोलती हैं, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने इसी को बुनियाद बनाकर सर से पांव तक मेकअप में आलूदा, खुशबुओं में बसे हुए, जेवरात, कपड़े, शादियों, सब चीज़ें जायज़ कर लीं। ये किसी का नहीं, आप एक रेफरेंस दे दें, सिर्फ एक रेफरेंस, कि कोई फिक्र, कोई इमाम, कोई आलिम ये कहते हैं कि औरत फुल मेकअप या थोड़ा मेकअप या जो भी है उसके बावजूद भी खुल के आ जाए, कोई एक नहीं है। हाँ, एक दीन है जो इजाज़त देता है फुल मेकअप के साथ और अपने जिस्म को सजा संवार के, और वो दीन है ख्वाहिश का दीन। एक मुफ्ती अंदर बैठा हुआ है, ख्वाहिशों को पूरा करने वाला, सजने वाला, कोई हमें एक्शन लेने ही नहीं देता, हम घबराने लगते हैं, नहीं वो नहीं। बाकी ना इस्लाम ने आपको किसी एक रंग का कहा है, आप अपनी सहूलत से जो करना चाहें करें, किसी दूसरे का ये मामला नहीं है। और कोई नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, लेट देम गो, इस्लाम पर्दे से नहीं शुरू होता। मैं कहती हूँ सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह की मार्फत हो जाए, एक दफ़ा अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, इंसान इन चीज़ों को तो कुछ समझता ही नहीं है। ये तो उसको बल्कि लगते हैं कि अल्लाह ताला हक तो ये है कि हक अदा ना किया। लेकिन इसके बरक्स आज आप देखें, आज अगर मर्दों की नज़रें पाक नहीं, अब इसको एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं, औरत को जब खुद पर्दा करना पड़ता है उसको पर्दा बड़ा बुरा लगता है। और ज़रा इसको ज़रा दूसरे रंग पे लीजिए, हम अब जिन सोसाइटीज़ में जीते हैं और जिस कल्चर को हमारे गांव के भी लोग देखते होंगे और हमारे शहरों के भी लोग देखते होंगे, औरत होने के नाते क्या हम में से कोई ये चाहती है कि मेरा मर्द ऐसी गंदी औरतों को देखे? कोई औरत चाहती है कि उसका मर्द जिना में मुलव्विस हो, उसके लड़कियों से माशके हों? बताइए, कोई नहीं चाहती ना। कहाँ ये चक्कर चलते हैं जहाँ औरत नंगी होकर सामने आ गई, जहाँ औरत अवेलेबल हो गई। जितना औरत ने खुद पर्दा ना करके अपने मर्दों और अपने बेटों और भाइयों को फितनों में डाला है ना, उतना शायद किसी और ने नहीं डाला। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक औरत कोई नहीं पसंद करती कि उसका मर्द दूसरी शादी करे, लेकिन वो औरत जो डाइवोर्स्ड है या विडो है या उसके साथ कोई सानेहा हो गया, उसको पूछें कि क्या ख्याल है अगर तुम्हारी किसी ऐसे मर्द से शादी कर दी जाए कि जो पहले से शादीशुदा है, तो कहेगी ठीक है मेरा घर बस जाएगा। असूल फर्क हो जाते हैं ना। आज अगर आप सिर्फ इस्लाम के इस एक हुक्म पे अमल करें, यानी आप देखिए कि सिर्फ परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इंसान शऊर के साथ ये काम करता है या किसी को भी करते देखता है ना, तो शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, ये एक किस्म की पाबंदी लग जाती है। मैंने लोगों से इतने कमेंट सुने हैं जो पहले अपने आप को खूब नुमाइश के साथ फिरती थी और अब थोड़ी पाबंदियों के साथ हैं, वो कहती हैं हमारी तो मुश्किलें टल गई। जैसे बैठे होते हैं घर में, फौरन उठे बाया पहनना चल पड़े। पहले होता था पहने क्या, इस्त्री किए हुए नहीं, ठीक है नहीं, वो है कंघी करें, मेकअप करें, चेहरे को साफ करें, ये करें, क्योंकि आप बाहर जाते हैं सब आपको दिखते हैं। असल हुर्रियत तो अबूदियत में, असल आज़ादी अल्लाह की मर्जी मानने में। शुरू में आप जिस चीज़ को मुश्किल समझते हैं ना, बाद में वो आपके लिए आसानियों का सबब बनती है। अब दो चीज़ें हैं, आप कहते हैं ठीक है हम ले लेते हैं ये भी गुंजाइश कि भाई औरत बग़ैर किसी आरइश और ज़िबाइश के चेहरा और हाथ खोल ले, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह फिक्र में इतनी गुंजाइश होती है कि बंदा खुद ना भी उस पर अमल करे लेकिन दूसरे की राय को अहमियत दे। एक इख्तलाफ होता है जो जाहिलों का इख्तलाफ है, इल्म नहीं है, उनको तो छोड़ दें, उनको तो नमाज भी बोझल लगती है। दूसरा इख्तलाफ दो किस्म का होता है जो इल्म आने के बाद आता है। एक वो है एविडेंसेस का इख्तलाफ, एक ने एक रंग से देखा, दूसरे ने दूसरे से देखा, एक को एक दलील स्ट्रांग लगी। ये इख्तलाफ गो के दुनिया में पसंदीदा भी नहीं है क्योंकि इससे मुसलमानों में सेक्ट्स बनते हैं और फिरकेबाजी होती है, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया में तो इसकी सजा देता है लेकिन इंशाल्लाह आखिरत में नहीं पूछेगा कि तुमने ये फतवा क्यों दिया और इस इमाम का ये फतवा था। लेकिन जो दूसरा इख्तलाफ है ना जो इल्म के बाद आता है, वो है बगजम बैना हो, ये वो होता है जिसमें ज़ाती फ़ायदे हों। किसी की बात बड़ी अच्छी लगती है, कहते हैं पिछले दौर का जो इख्तलाफ था लोगों का वो इल्म की वजह से था, ये दलील तुम्हारे पास, ये दलील, ये दलील, ये दलील। आज के दौर का इख्तलाफ जो दीनी आवाज़ें भी आपको सुनाई देती हैं ना कि अब सूद हलाल हो गया, पर्दे की ज़रूरत नहीं, अब ये जायज़ नहीं, आज के दौर का इख्तलाफ जो ये ख्वाहिश का इख्तलाफ, आज हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, हम मिसफिट नहीं होते। मैंने देखा है कई दीन वाले, इतना उनके अंदर अल्लाह ने दीन रखा हुआ, इतना कुछ है, लेकिन अपनी औरतों को पर्दे के ऊपर वो भी समझते हैं कि इट्स टू मच। अल्लाह ताला ने ये जो तस्करा किया कि ये मुनाफिकीन है, अल्लाह ताला इनको रुस्वा करेगा और इनको पीछे करेगा, फरमाया सुन्नत अल्लाह फिल लसीन खलौ मिन क़ब्ल, ये अल्लाह की सुन्नत है इन लोगों के मामले में जो पहले गुजर चुके हैं। वलन तजीद अली सुन्नत अल्लाह तब्दीला, और आप सुन्नत इलाही में कोई तब्दीली न पाएंगे। पीछे मुनाफिकों की बात थी, अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि जो लोग अल्लाह के रसूलों के साथ ऐसा मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करते हैं, इस किस्म के काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको जलील कर देगा, रुस्वा कर देगा, उनको दुनिया में भी मुश्किलात सहनी पड़ेंगी और आखिरत में भी उनके साथ ये होगा। खुलासा यही है कि ये लोग जब ऐसी गलत हरकतें कर करा के अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देते हैं, अल्लाह के नबी के साथियों को तकलीफ़ देते हैं, तो फिर वो क़यामत के दिन भी रुस्वा होंगे और दुनिया में भी उनका हाल यही कुछ होगा। अब देखिए कि ये आयतें हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान को भी खोलती हैं कि अगर इनके दिल में निफाक होता और वो इस्लाम के बदख्वाह होते, बदबातिन होते, तो क्या वो अल्लाह के नबी के बाद मदीना में ठहर सकते थे? उनको जो इज़्ज़त मिली वो मिल सकती थी? देखिए खोटे दिल वाले को अल्लाह कभी हमेशा की इज़्ज़त नहीं देता, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें। ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करके दुनिया में इज़्ज़तदार नहीं बनते, लेकिन अल्लाह के नबी के बाद आपके सहाबा को जो इज़्ज़त मिली उससे पता चलता है कि आपके दौर में जो मुनाफिकीन आपके ऊपर और आपकी अज़वाज मुतहरात पर कीचड़ उछालते थे, अल्लाह ने उन्हीं को रुस्वा कर दिया, जलील कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस सबक में हमने जितने अहकाम पढ़े उनको हिकमत के साथ अल्लाह की मदद से अपने ऊपर लाते हुए अमल करना आसान फरमा दे। यहाँ पे सबक पूरा हुआ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.